हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आदित्य सुनैना को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ पर डॉक्टर के साथ उसका पहले से ही अपॉइंटमेंट फिक्स होता है, जो कि उसने रवि को बोलकर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कह दिया था, और रवि उनका अपॉइंटमेंट ले लेता है। डॉक्टर सुनैना का चेकअप करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि सारी चोटें अभी पहले से काफ़ी ठीक हैं, बस पैर की चोट और हाथ का फ्रैक्चर ठीक होने में ही थोड़ा वक्त लगेगा, और सुनैना की सारी चोट का बैंडेज फिर से करने लगते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सुनैना आदित्य से बोलती है, देखा, मैं बोल रही थी ना तुमसे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम तो सुनते ही नहीं। तो सुनैना की ये बात सुनकर आदित्य कुछ नहीं बोलता, लेकिन डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोल पड़ते हैं, लगता है आपके पति आपकी कुछ ज़्यादा ही फ़िक्र करते हैं, और ये तो अच्छी बात है ना। तो डॉक्टर की ये बात सुनकर आदित्य और सुनैना दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं, और उसके बाद डॉक्टर की तरफ देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराते हैं, और फिर आदित्य सुनैना के फ्रैक्चर का फिर से एक्सरे करने को बोलता है। तो डॉक्टर कहते हैं अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी 4-5 दिन ही तो हुए हैं एक्सीडेंट को, और इतनी जल्दी दोबारा से एक्सरे करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आदित्य उनकी बात नहीं सुनता और फिर से एक्सरे कराने को बोलता है। तो डॉक्टर उसकी बात मानते हुए सुनैना के फ्रैक्चर का दोबारा से एक्सरे करते हैं और बाद में रिपोर्ट्स लेने आने के लिए बोलते हैं। तो आदित्य बोलता है कि वो अपने असिस्टेंट को बोल देगा रिपोर्ट्स उठाने के लिए, और उसके बाद जब भी आना हो डॉक्टर उसे ही बता दे, या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम या कुछ हो तो उसके लिए तो वो उसके असिस्टेंट को कॉल कर सकते हैं। मिस्टर सिंघानिया, आपके बोलने पर मैंने आपकी वाइफ का दोबारा से हाथ का एक्सरे कर तो लिया, लेकिन ज़्यादा नहीं था फ्रैक्चर पहले ही, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य को इस तरह से सुनैना की फ़िक्र करते देख डॉक्टर उसे समझाते हुए बोलते हैं, तो आदित्य डॉक्टर की बात समझ जाता है और फिर साइना का बैंडेज होने के बाद उसे अपने साथ लेकर हॉस्पिटल से चला जाता है, और फिर कार स्टार्ट करके कहीं और ही जाने लगता है। सुनैना फिर से उसके साथ वाली सीट पर ही बैठी होती है, लेकिन पहली बार की ही तरह इस बार भी वो आदित्य से कोई सवाल नहीं करती, क्योंकि आदित्य उसे पहले ही बोल चुका होता था कि वो उसे कहीं और लेकर जा रहा है, कोई अलग और स्पेशल जगह, और सुनैना ने उस बारे में जब कुछ पूछा था तब भी आदित्य ने ये कहकर बोला था कि खुद ही चलकर देख लेना, तो इसलिए ही सुनैना बस अब वहाँ पहुँचने का इंतज़ार कर रही थी, और आदित्य के साथ कार में बैठी हुई उसकी तरफ देखकर मन ही मन सोचती है, क्या सच में इतनी ज़्यादा फ़िक्र क्यों है तुम्हें मेरी? सच में कितना प्यार करते हो? शायद मैं तो कभी समझ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैंने तो कभी किसी से प्यार किया ही नहीं, लेकिन ये जो भी है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, इसका कुछ एहसास तो शायद मुझे भी होता है, और ये वर्ल्ड की सबसे अच्छी फीलिंग है। बस करो घूरना, तुम्हारा ही हस्बैंड हूँ और तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन तुम तो इस तरह से देख रही हो जैसे पहले और आखिरी बार तुम्हें मुझे देखने का मौका मिला हो। सुनैना को इस तरह खुद की तरफ एकटक देखता हुआ पाकर आदित्य बिना उसकी तरफ देखे ही उसी तरह कार ड्राइव करता हुआ बोलता है, तो उसकी ये बात सुनकर सुनैना सकपका जाती है और अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए बोलती है, नहीं नहीं तो मैं कहाँ तुम्हें घूर रही हूँ, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। अच्छा, मेरी तरफ देखकर ऐसा क्या सोच रही हो? सुनैना को इस तरह से हड़बड़ाया देख आदित्य मुस्कुराते हुए उससे सवाल करता है, बस यही कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो और मेरे कौन से सवालों के जवाब मिलेंगे आज मुझे? एक गहरी सांस भरते हुए सुनैना ये बात बोलती है तो आदित्य भी एकदम चुप होकर ड्राइव करने लगता है और आगे कुछ नहीं बोलता, बस यहाँ से हटकर। दूसरी तरफ उस पूरे होटल रूम में इधर उधर भागकर बाहर निकलने की जगह ढूंढकर और उस आवाज़ और हंसी को सुन सुनकर उसके बाद चेक कर लेना अब काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, और वो फिर से दरवाज़े के पास आकर दरवाज़ा खोलने की नाकाम कोशिश करने लगती है, क्योंकि दरवाज़ा नहीं खुलता, खुलना तो दूर, दरवाज़ा उसके उन नाजुक पतले हाथों से हिलता तक नहीं है, और वो फिर से उसी तरह दरवाज़े के पास ही बैठ जाती है, क्योंकि उसे वो बाकी कमरा बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और अंदर बैठने पर उसे अजीब सा डर लगता है, इसलिए वो इस उम्मीद में दरवाजे के पास ही बैठती है कि कोई तो कमरे के अंदर आएगा और शायद तभी उसे बाहर निकलने या भागने का कोई मौका मिल जाए। तो वो दरवाजे के पास ही जमीन पर बैठी रोया करती है और सोचा करती है कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ, और आखिर उसके साथ ही क्यों? पता नहीं क्या किया मैंने ऐसा जिसकी सजा मिल रही है मुझे, और कौन है ये सब और क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ। रोती हुई परेशान सी नैना अपने मन में ये सब कुछ सोचती रहती है। तभी उसे दरवाजे की दूसरी तरफ बाहर की कोई आहट सुनाई देती है, तो वो दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है। उसे लगता है शायद कोई दरवाजे की तरफ ही आ रहा है, और ये सुनकर उसके मन में वहाँ से बाहर निकलने की थोड़ी उम्मीद आती है, तो उसके साथ साथ ही उसे थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन फिर भी खुद को नॉर्मल करते हुए वो दरवाजे से कान लगाकर बाहर से आती आवाज़ सुनने की कोशिश करती है, और तभी उसे किसी की आवाज आती है और फिर दरवाजा बाहर से अंदर की तरफ थोड़ा सा खुल जाता है। कम विद मी। बड़े से ब्लैक सनग्लासेस, कैप और उसके साथ चेहरे पर मास्क लगाए हुए एक आदमी का आधा चेहरा नैना को नजर आता है, और थोड़ा सा दरवाजा खोले हुए वो अंदर झांककर एकदम धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए इस तरह से बोलता है कि सिर्फ नैना को ही उसकी बात सुनाई दे। कौन हो तुम? तुम्हें उसी आदमी ने यहाँ भेजा है ना? उस आदमी का ऐसा हुलिया देखकर नैना का उस पर विश्वास करना काफी कठिन हो जाता है, और उसे समझ नहीं आता, क्योंकि उसे यहाँ पर अब तक जितने भी लोग मिले थे सब वही थे जो उसे यहाँ इस होटल रूम तक लेकर आए थे। उसके अलावा तो कोई और भी इंसानों से नहीं दिखा था। लेकिन ये सोचते हुए तभी उसे याद आता है कि लिफ्ट में उसे एक इंसान दिखा था जिसने की ऐसे ही चश्मा और टोपी लगाई होती है। तो ये देखते ही नैना जल्दी से दरवाजा थोड़ा सा और खोलते हुए दरवाजे से बाहर निकल आती है, और उस आदमी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मुझे यहाँ से निकलना है, आई नीड हेल्प। पता है मुझे, और मैं वही तो कर रहा हूँ, चलो अभी, बाकी बातों का वक्त नहीं है। वो आदमी नैना का हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोलता है, और नैना बाहर निकलकर देखती है कि उस गलियारे में कुछ अंधेरा होता है। शायद उस आदमी ने ही कुछ करके वहाँ की आधी लाइट स्विच ऑफ की होती है, जिससे कि कोई उन्हें वहाँ से बाहर निकलता ना देख पाए, और इसीलिए उसने कमरे का दरवाजा भी पूरा नहीं खोला होता, और नैना के निकलते ही पूरा दरवाजा वापस वैसे ही बंद कर देता है। वहाँ से होते हुए वो दोनों लिफ्ट की तरफ आते हैं, तो वो आदमी उसे लिफ्ट के अंदर जाने से मना करता है और पीछे की तरफ होता हुआ सीढ़ियों की तरफ आता है और सीढ़ियों से ही नीचे उतरने को बोलता है। लिफ्ट से हम जल्दी नीचे पहुंच जाते और जल्दी ही यहाँ से बाहर निकल पाते। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए उस आदमी के पीछे आती हुई नैना उससे बोलती है,
लिफ्ट में कैमराज होते हैं और वो जो भी है तुम्हें एक मिनट में फिर से पकड़ लेता। उसके लोग भी होंगे वहाँ पर, इसलिए जल्दी चलो, यहाँ भी आ सकते हैं वो सब। नैना की बात सुनकर वो आदमी उसे समझाते हुए बोलता है, तो फिर नैना भी कुछ और नहीं बोलती और उसके साथ ही जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगती है। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो लोग अब ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं, और वो आदमी वहाँ से मेन गेट की तरफ ना जाकर पीछे बैक डोर की तरफ जाने लगता है, और फिर वहाँ पर पहले से ही खड़ी एक कार में बैठ जाता है, और कार में बैठने के बाद अपनी आंखों पर चढ़ाया हुआ सनग्लासेस उतारकर अपनी जैकेट की पॉकेट में रख लेता है, और कार के बाहर की तरफ खड़ी हुई नैना को देखकर उससे बोलता है, क्या सोच रही हो अब, फिर से पकड़ जाओगी, चलो जल्दी बैठो अगर यहाँ से निकलना है तो। उस आदमी की बात सुनकर नैना को थोड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आते हुए सोच में पड़ जाती है कि कहीं वो फिर से गलती तो नहीं कर रही, किसी अनजान आदमी पर यकीन करके कहीं ये भी उन लोगों से मिला हुआ हो तो, और इस तरह से उसे बचाने का नाटक करते हुए उसे अपने साथ लेकर जा रहा हो। और सबसे बड़ी बात, उसे पता कैसे चला कि नैना वहाँ पर उस कमरे में है, और उस कमरे को खोलने की चाबी वो उसके पास कैसे आई? ये सब सारी बातें नैना के दिमाग में चल रही थीं, लेकिन फिर भी वो कैसे भी यहाँ से तो बाहर निकलना चाहती थी, और ये आदमी उसे यहाँ से बाहर निकाल रहा था, तो दूसरी तरफ से थोड़ा रिस्क लेते हुए नैना आखिर उसके साथ उसकी कार में बैठ ही जाती है। क्रमशः